તારીખ 14/9/1983 શ્રી સમયસર ગાથા 17-18 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 3
સંયમ ક્યાં ચીજ હૈ સંયમ કિસો કિસો કહેતે હૈ ધર્મ કી ઓળખાં અનંત ગુણ હૈ ઉસમે સંયમ કા બાહ્ય સંયમ સે મુખ્યતયા તો અન્ય રક્ષા કા પરિપાલન દેખા જાતા અંતરંગ સંયમ મે યાની પરમાર્થ સંયમ મે પરિણામ સંયમિત હોકે અપને સ્વરૂપ મે સ્થિર હોય અપને સ્વરૂપ મે લગ જાય અપને સ્વરૂપ મે લીન હોય इसको परमार्थ संयम यानी उत्तम संयम कहने में आता है। ऐसा उत्तम संयम धर्मी को सम्यक दृष्टि जीवन को ही होता है। मैंने धर्म है वो संयम स्वरूप है और वास्तव में जो सच्चा संयम है वो धर्म स्वरूप है। बाह्य संयम के साथ अंतरंग संयम की व्याप्ति कभी नहीं भी होती तो वहाँ सच्चा संयम नहीं है, लेकिन अंतरंग संयम के साथ बाह्य संयम की व्याप्ति अवश्य अवश्य होती ही है, नियम रूप से होती है, क्योंकि जो परिणाम अंतरंग में लीन हुए कुछ परिणाम निमित्त किसी भी बाह्य हिंसा में किसी भी जीव को प्राणघात में किसी भी जीव को दुख में निमित्त नहीं होगा। इसलिए अंतरंग संयम के साथ नियमबद्ध रूप नियम रूप से बाह्य संयम होता ही है, लेकिन बाह्य संयम के साथ ऐसा कोई नियम नहीं है कि अंतरंग संयम हो जाए, नहीं भी होता है। धर्मी को होता है और जिसे धर्म नहीं प्राप्त किया यथार्थ विधि से उन्हें नहीं होता है, उन्हें वो केवल पुण्य बंध का कारण होता है, लेकिन ऐसा पुण्य बंध का कारण आत्म नहीं है, कोई कारण रूप नहीं पड़ता है, यानी आत्म से कोई तत्व नहीं है। इसलिए जैन दर्शन में संयम को उत्तम संयम उत्कृष्ट संयम ऐसा कहने में आया है, और यही संयम का सच्चा स्वरूप है जो धर्म से अभेद होने से उसको धर्म का लक्षण कहने में आया है। धर्म और संयम कोई अलग अलग दुख है, તે સબ સાથ નહીં રહેતા એના ભાવ તમે અલગ અલગ રહી નહીં તો કહેતે હૈ એસે નિસમ કો કે અપને સ્વરૂપ મે લીન હોને સે ધર્મ પ્રગટ કરતા હૈ પ્રગટ હોતા હૈ ઉસી કો સંયમ ધર્મ કહેને મે આતા સંયમ કે
किस तरह सुगमता से किया जाए का निर्देश है। टीका करते हुए आकर 20 नंबर उनको गज में टीका करने का भाव चालू रहा है तो इसी विषय
सामान्य तौर से तो पूर्व गाथा का जो विषय है उसको अनुसंधान करते हुए कलश की रचना एक ग्रंथ में है और पद रखते हैं तो उस पद के नाम से इसको संपूर्ण करते हैं आगे लेकिन यहाँ इसी विषय को पद में लेते हुए और फिर बाद गज में इस विषय को लंबाया है आचार्य महाराज कहते हैं कि परंतु जब ऐसा आत्मा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाद विपाल सबसे अनुभव में सदा से आने पर विचार ये होता है कि हमें ऐसा दिखाई नहीं देता आप कहेंगे मानेंगे लेकिन दिखाई नहीं देगा वहां तक मानने का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता लेकिन कोई आपको ये है कि आपके आंगन में घर के आंगन में घर के चौक में और राजस्थान आदि ने पुराने से मकान दिए हमारे यहाँ भी यही पद्धति थी कि अंदर में जाके बीच में घर में एक चौक रखे जाते ऐसे वो घर के चौक में अपने पूर्वजों ने बहुत दौलत हमारे यहाँ उसको अदरक दौलत कहते हैं अमर्यादित दौलत गाड़ी हुई है उसको वहाँ से निकालो तो तर्क करेगा क्या हमको तो दिखाई नहीं देता। आपने कहा कि आपके पूर्वजों ने ये दौलत यहाँ जमीन में रख दी है आप सिर्फ छह इंच आधा फुट होते देखोगे तो आपको हमारा कथन की प्रतीत आ जाएगी। सोने के बर्तन में हीरे और रतन सब रखे हुए हैं कितने हैं एक दो नहीं है बड़ा दीर्घ है कितने बर्तन हैं वो तो खोदते जाओगे तो पता चलेगा कि एक से पीछे एक से पीछे एक से पीछे निकलता ही रहता है न जाने कितना होगा कोई अंत ही नहीं दिखे और आधा फुट मिट्टी निकाल के बर्तन ही देखे धीरे नहीं देखे तो उसने पूरा खजाना देख लिया। बर्तन देखा है या पूरा खजाना देखा है तो कहने वाले की बात का विश्वास में पूरा खजाना आए जाता है वहां ये प्रयोजन भी नहीं रहता कि किस किस रतन किस किस प्रकार के हैं। अवैध रूप से पूरा ढगला जो है उसका स्वामित्व बना आ जाता है हमारे पोजेशन में है ये पूरा भंडार उसका भान ही उसकी भूमिका को उतरा देता है। जहां तक नहीं देखा था और शंका में था वहां तक तो उनकी जो दारिद्रता की दीनता है उसका भाव जान उठा। हम बर्तन ही देख लिया सोने का एक, वो भी एक पार्ट में पूरा नहीं देखा, सोचने में तो इसका एक अंश ही देखने में आता है तो पूरा का पूरा खजाना देख लिया। पहले तो कभी नहीं देखा था प्रकाश जी है? ये तर्क करते हैं कि अनुभूत और परिचित चीज में अंश से अंशी का ज्ञान ऐड हो सकता है, लेकिन जो अनादि से अपरिचित है ऐसे अंश से अंशी का ज्ञान कैसा हो सकता है? कैसे हो गया? देखा था क्या पहले खजाना? ये तो खजाना ही नहीं देखा है, ये तो इनका बर्तन देखा है, फिर भी खजाने का प्रतीत आता है और दारिद्र छुप जाता है भाव में तो परिणाम में। वैसे ही यहाँ आता है महाराज कहते हैं कि भले ही ऐसा नहीं दिखे कि भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, लेकिन यहाँ तो छह फुट की मिट्टी भी नहीं खोदनी है, इतना भी परिश्रम नहीं है, यहाँ तो तेरी अवस्था में मौजूद है, प्रगट है, तेरा ध्यान नहीं है, ध्यान का करवट बदलने की बात है, शरीर का भी करवट नहीं बदलता है, जो लक्ष्य है अनादि बंधक, ऐसा कहा है अनादि बंधक वश, अनादि बंधक वश परद्रव्यों के साथ एकत्व से निश्चय है, एकत्व का निश्चय हो गया है प्रगति में और इसलिए ज्ञान में एक विपर्यास पैदा हुआ है जिसको मूंदता कहते हैं। ना विपर्यास को मूंदपना कहा है, जैसे उलझन में मति एकदम सीमित हो जाती है, कोई काम करने की सूझबूझ नहीं रहती है, तो ये मति मूंदाई भी ऐसा कहते हैं। ऐसा अपने विषय में परद्रव्य के साथ अनादि बंध के वश, अनादि संबंध के वश परद्रव्य के साथ एकत्व का इतना दृढ़ निश्चय से प्रवर्तमान हो रहा है कि ऐसे मूढ़ अज्ञान को मैं पड़ा का अनुभव ज्ञान में होते संते भी ऐसा जो ये अनुभूति है वही मैं हूँ, ऐसा उनको देखने में नहीं आता, वैसा उनको नजर नहीं आता, तो उसको आत्मज्ञान पैदा नहीं हुआ कहने में आता है। लेकिन आत्मज्ञान करना कितना आसान है कि आबार गोपाल को ये अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ ही रहा है, बहुत मुद्दे की बात ये कर दी आचार्य महाराज ने। ये विषय बिल्कुल कठिन नहीं है ऐसा इसमें संकेत है, क्योंकि इसकी कठिनाई को देखते हुए बहुत से इस विषय के अरुचि रखने वाले भी इससे दूर हो जाते हैं कि क्या करें साहब, ये तो बहुत बड़ी बड़ी ऋषि मुनि लिए एलएलबी की बात है, पर हम रहे प्राथमिक स्कूल के विद्यार्थी, हमें तो शुरू की बात समझनी चाहिए, ये उनकी उनकी बड़ी बात है, हमें क्या मतलब है, हमारा क्या संबंध है, ऐसा करके उनको धक्का देते हैं, उसका अनादर करते हैं, उसको कहते हैं तुम कोशिश तो करो, जब इसमें इतना बड़ा फायदा है, जन्म मरण छूटने का फायदा है, तब दुख से तो वैसे ही छूटने के लिए सारे दिन मजदूरी करता है, आज क्या करता है 6 घंटा 8 घंटा ऑफिस से जाता है, मानसिक परिश्रम भी मजदूरी तो है ही, क्या है ये भी परिश्रम, तो ये तो एक कृत्रिम कल्पित सुख के लिए वो इतना करता है, क्योंकि वहां उन्होंने सच्चा सुख मान रखा है, सच्चा सुख का ज्ञानी उसको गलत निर्णय कहता है, लेकिन इनके लिए जहां तक गलत नहीं ध्यान में आता नजर में आता वहां तक तो सच्चा मानकर अपनी समय का शक्ति का पूरा भोग देता है, उसका विवोचन देखे कितना है, 6 घंटा 8 घंटा 10 घंटा तो ऑफिशियल, अनऑफिशियल कितना तो उसे निरंतर चलता है, घर पे आते ही वही चलता है, टेलीफोन आता है, वो है प्रकार के इनके विचार चलते हैं, ये कोई समय और शक्ति का अध्याय नहीं है क्या? इसमें समय नहीं लगता है स्कूल का, और उसमें शक्ति भी नहीं लगती है क्या?
ये सब इसमें लगता है,
क्योंकि सुख के पीछे ये सब परिश्रम है। ये सच्चा सुख है, स्वाधीन सुख है, निरातुर सुख है, और आत्मा में से पैदा होने वाला तृप्ति करने वाला सुख है। यहाँ से तो तृप्ति भी नहीं होगी। ऐसा सुख के लिए अगर तुम ये कहते हैं कि ये अपने परिणमन में सभी को आवाज गोपाल को मैंने सभी को छोटे मोटे सबको अनुभव में आ रहा है कि ये अनुभूति है, सोई है, मैंने मैं पना जो हो रहा है, जहाँ हो रहा है, अपना अस्तित्व, अपनी मौजूदगी जहाँ अनुभव गोचर हो रही है, इस मौजूदगी में, इस सत्ता ने न तो विकृत भाव, विकार भाव, राग भाव का प्रवेश है, संबंध है, फिर इनके विषय जो शरीर आदि है इनका कोई प्रवेश संबंध है, ये तो हो ही नहीं सकता। ऐसा एक भिन्न अस्तित्व को, भिन्न चैतन्य का अस्तित्व को ग्रहण करे, और इस ग्रहण नहीं हो वहां तक ग्रहण करने की ही कोशिश करे, दूसरी प्रवृत्ति नहीं करे, तो अनुभवी ज्ञानियों ने तो ये कहा है कि अगर इस प्रकार की तेरी मानसिक भूमिका में अगर तैयारी होगी तो भी कहीं प्रकार के इसके जो प्रतिरोधक भाव है, तैयारी का जो भाव है कि हमें यही करना है, इसका जो दृढ़ संकल्प है, दृढ़ निश्चय है, उसमें कहीं प्रकार की बाधाएं हट जाती हैं। लेकिन जी इसका ऐसे मुझे यही जीवन में कार्य करना है, मेरा जो ये मनुष्य भव है वो इसी कार्य के हिसाब से मुझे संपन्न हुआ है, ऐसा उनको पहले प्रतिभास आना चाहिए, भीतर में उसको ये लगना चाहिए। विचार का विषय नहीं है, ऊपर से इतना विचार आ जाए नहीं, भीतर से ऐसा लगना चाहिए कि ऐसे निकृष्ट काल में मुझे ये सच्चा पारमार्थिक विषय मेरे सामने आ गया, ऐसा उदय आया कि विश्व में कहीं जो पाया नहीं जाता, ऐसा विषय मुझे मेरे सामने आया है, मेरी समझ के सामने आया है, और मैं अपने स्वयं को बुद्धिमान स्वीकार करता हूँ। क्या कोई समर्थन स्वीकार करता है? बुद्धि में कोई कमी नहीं समझता, और संपत्ति में कोई पूरी नहीं समझता, दो बातें साथ में है। कितनी संपत्ति मिल जाए तो क्या अभी बहुत बाकी है, मेरे से तो ये बड़े हैं, इससे तो ये बड़े हैं, इससे तो ये बड़े हैं, हमारे से तो ये बड़े हैं, इससे तो ये बड़े हैं, फिर देश में से परदेश में चले जाते हैं कि हेनरी फोर्ड बड़े हैं। अरे तुझे क्या होना है? तुझे तो होना है वो तो तेरे में जो सब कुछ संपत्ति है इसका मालिक होना, बाई संपत्ति का मालिक होने में तुझे आकुलता बढ़ेगी, इसके रस से कितना कुछ होता है इसका तुझे पता नहीं है, ज्ञान में इसको कहते हैं बढ़ता है, इनका विशेष ज्ञान के निर्भर ज्ञान में होता है, तो उसको तरस आती है, उसको अनुकंपा आती है, करुणा आती है, तो करुणा के
बस थोड़ा राग रह गया तो ये रास्ता बता के चले जाते हैं, जैसे कोई मुसाफिर द्रव्य दृष्टि प्रकाश में उपमा ली है कि जैसे कोई मुसाफिर अपने रास्ते जाता है सही रास्ते पे, तो साथ ही भूले हुए को अंगुली निर्देश कर देता है कि यही सच्चा रास्ता है, इससे ज्यादा करुणा के अलावा इसके पीछे कोई भी नहीं, कोई आशय नहीं है, क्योंकि वो तो नंग दिगंबर होके तो निकल पड़े हैं, भगवान कुंदाचार, अमृतचंद्र स्वामी, इनका बाह्य जो दीदार है वही सोचित सूचन करता है कि उन्हें तो कुछ चाहिए ही नहीं। फिर इसके विषय में शंका की गुंजाइश नहीं है कि कुछ कारणवश कुछ प्रयोजनवश तो वो कहते होंगे, स्वयं का कुछ प्रयोजन होगा कि ये बात मेरी। तिलतुष मात्र जिसको परिग्रह नहीं है उन्होंने ये बात कही है। हमारे एक संबंधी थे, वो कहते थे कि ऐसी बातें तो भूखे पेट नहीं कही जाती, जो पेट में बराबर पड़ता है तभी दिमाग चलता है कि ये तत्वज्ञान के विषय में इतनी लंबी चौड़े दिमाग लगाए, उपयोग को लगाए। लेकिन पहले तो ये करो कि हमारा खाना पीना तो व्यवस्थित हो जाए, ऐसी कोई व्यवस्था समाज में बैठ जाए, राज्य में बैठ जाए, विश्व में बैठ जाए, फिर ये सब बात अच्छी तरह चल सकती है। हमने कहा भाई जिसने ये बात कही है
और इसी हालत में इतना बात कहने का अनुभव करने का सामर्थ्य आत्मा में है, ऐसा इसमें सिद्ध होता है, इसकी स्थापना होती है, ये गलत विचार है। तो पहले सब हमें अनुकूलता हो जाए, फिर हमारा विकल्प उधर उधर बन दौड़ेगा, तब ये फिर से इसका विचार करता है, ऐसा नहीं होता। आदमी को लगन से जो भी काम करना हो और जिसकी जरूरत लगे, इस जरूरत वाले चीज की लगन से काम करना हो तो वो हाल में करेगा। दुनिया में शौक कैसे करते हैं, अमीर की बात छोड़ दो, गरीब आदमी क्या करते हैं, तो जो अपने शौक के विषय उनको प्राधान्य देकर दूसरी दूसरी जगह वो सब चला लेते हैं, जैसा वैसा कपड़े पटे हुए शहर में जूते नहीं हो लेकिन सिगरेट पीना हो तो नहीं लेता है, क्या करता है, सिनेमा देखनी है तो वो देख लेता है, खाने का पैसा नहीं मिले फिर भी नंबर लगाने का शौक हो तो नंबर लगा लेता है, हमने तो हमारे नंबर है। कपड़े का भी ठिकाना नहीं हो, जूते का ठिकाना नहीं हो, खाने पीने का ठिकाना नहीं हो, परिवार के पालन पोषण करने का ठिकाना न हो, लेकिन जिसमें अपनी वृत्ति जाती है जोर से वहाँ वो कुछ नहीं देखता है। वैसे ही अगर सही जरूरत लगे, सच्ची जरूरत लगे तो ये काम नहीं जाएगा। भीतर में अपने को पूछने की आवश्यकता है कि मेरी आत्मा तुझे इसकी जरूरत है कि नहीं, और ये भी जरूरत ऐसी कि उसके बिना चलेगा नहीं। सब जो उपयोग है वो सही परिस्थिति में आएगा, यथास्थान में आएगा और अपना काम होगा। भले ही दूर का काम नहीं है, अपने भीतर में अपने का काम है, अन्य साधन की अपेक्षा नहीं है, प्राथमिकता नहीं है, फिर भी इसके विषय में जो प्राथमिक मानसिक तैयारी संकल्प निश्चय की तैयारी जो है वो तो पूरी पूरी होनी चाहिए। आवश्यक चीज है जहाँ से सब प्रकार की पात्रता पैदा होती है, वहाँ स्वयं का जो धर्म है, विकराल दशा है, दर्शन समय ज्ञान जिसको कहते हैं वो अवश्य आता ही है, प्रकट होता ही है। ज्ञानियों ने इस बात की गारंटी दी है कि होगा होगा और होगा ही। मोक्ष मार्ग प्रकाश में ऐसी बात आती है कि समय दर्शन के लिए तो तत्व ज्ञान का अभ्यास ही मुक्त होता है। फिर भी तत्व ज्ञान का अभ्यास करने वाले को समय दर्शन होता है, बाद में होता है, ऐसा करते इसका ये मतलब नहीं है कि तत्व ज्ञान का अभ्यास करने वाले को शंका में रखा है वहां, चलिए वो होगा या नहीं होगा, या तो नसीब में होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, ऐसा होगा तो होगा ही। तत्व ज्ञान का अभ्यास करने वाले जीव में दो प्रकार हो जाते हैं, एक तो यह यथार्थ पद्धति से जो तत्व ज्ञान का अभ्यास किया जाता है वहाँ इसका फल श्रुति रूप जो धर्म है, समय ज्ञान है, समय दर्शन है, वो कभी पैदा होगा ही नहीं। वहां तो उत्पन्न होगा ही नहीं, और यथार्थ पद्धति के लिए तत्वज्ञान का अभ्यास होगा। अवश्य में 100% उसकी प्राप्ति होगी, होगी और होगी। गणित में एक प्लस वन एक तो एक में एक मिलाने से दो होता है, इसमें कभी भूल हो सकती है, लेकिन इसमें भूल होगी नहीं, ऐसा है। इसमें भूल नहीं होती है, फिर भी शायद हो सकती है, लेकिन ये बात है गिनती की और ये बात है स्वभाव की। विज्ञान की बात है, विज्ञान में फिर गिनती में फिर हो सकता है, इसमें नहीं होता है, जितना ठोस बनाए उतना रखा। तो ये कहते हैं कि सभी को अनुभव में आ ही रहा है, ये जो मैंने पढ़े वाला सामान्य ज्ञान का अनुभव है, वही आत्मा है, वही आत्मा है। आत्मा कोई दूसरी चीज नहीं है, और आत्मज्ञान में कोई ऐसी चीज नहीं है कि उसको इतनी कठिन मान के हम अलूपी कर ले। काफी वाली है अनुभव पता चल जाती है कि इस काल में ऐसे आत्मानुभव कठिन है, ऐसा कहने वाला प्रत्यक्ष तौर से अनुभव में और आत्मा की और रुचि वाला है, आत्मा की अरुचि इसको हो गई है, ऐसा इसमें प्रसिद्ध होता है। वो तो अपने स्वानुभव से कहते हैं कि इस काल में हमें अनुभव हुआ है और इस काल में अनुभव हो सकता है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। भले ही अभी भगवान महेंद्र परमेश्वर विद्यमान नहीं है, इतने पुण्य नहीं है कि इस काल में तो पूरे के पूरे 24 का काल बीत गया और 20 का काल चल रहा है, फिर भी उन्होंने जो प्रदर्शित किया, निरूपित किया, ऐसा मोक्ष मार्ग अंतिम शिक्षण को पच्चीस साल हो जाने के बाद भी, और अभी भी बाकी के जो पंचम काल के जितने भी विचार रहा है 18,500, तो पूरे काल में मोक्ष मार्ग जीवंत रहेगा, जीवंत है और जीवंत रहेगा। उन्हें इस काल में वो पैदा होने वाला जीव कोई भी कोशिश करके प्रयत्न करके है उस मार्ग को प्राप्त करता है। तो उनके जो साधन है सत्पुरुष आदि सत्ताधी बाह्य अंतरंग में सिर्फ अपने उत्पादन की शक्ति का सही स्थान में यथा स्थान में उसका प्रयोग होना कल दूसरी बात का है। ऐसा जो आत्मज्ञान अज्ञान का श्रद्धान गड्ढे के सिंह के श्रद्धान समान है, इसलिए वैसे तो ना सिर्फ पैराग्राफ में जो बताई अस्थि से जो बात बताई कि ऐसे उत्पत्ति होती है उत्पत्ति प्रक्रिया, और इससे विपरीत भाव से उत्पत्ति नहीं होती है, इतना ही कहने में ये बात रख दी है श्रद्धान वाली बात। ज्ञान से श्रद्धान होता है, बिना ज्ञान गड्ढे के सिंह के समान श्रद्धान होता ही नहीं है, ऐसी इस बात को यहाँ गुठा नहीं है। क्या कहने वाले की विशिष्टता है कि प्रतिम पक्ष में तो बराबर इसकी इसकी बात आनी चाहिए कि ऐसा होता है और वैसा नहीं होता है, ये बात अधिक एक पॉइंट उसमें रख दिया कि ऐसे आत्मज्ञान के अभाव से अज्ञात का श्रद्धान गड्ढे के सिंह के श्रद्धान समान है। जैसे गड्ढे को सिंह नहीं होते तो जाना जाता है, ये बात तो बिना पाए की है, बिना नींद की बात है, ये तो मूल में है भी तो देखा है, तो देखा है ये बात ही बिल्कुल इतनी गलत है जहाँ है नहीं वहाँ कैसे देखा तो हमें प्रतीत है, ये बात तो दूर की रह गई। अज्ञानी तो ज्ञानी कहते हैं कि तुझे तेरा जो मिथ्या आभास है, मिथ्या श्रद्धान है, वो तो गधे के सींग के समान है, तुझे पर विषय में सुख आता है, तुझे सभी प्रकार की अनुकूलता में सुहाता है, सुखाता है, तो वहां सुख कहाँ है? एक एक रक्षण को पकड़ पकड़ के देख तो जहां भी तेरी सुख की कल्पना हो, काट काट के अंतिम इच्छा जो है, अंश जो एक परमाणु देख पहचान करके क्या सुख है वहां है नहीं, होंगे दिखता है इतना ही नहीं, ये गद्दे का सिंह मुझे लगता है ऐसी बात जल्दी सुनने का, गद्दे का सिंह है नहीं तो देखा तो दिखना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये तो लग रहा है मुझे, ऐसी बात है तेरी तो मुझे ये लगता है, मुझे इसका स्पर्श हो रहा है, ऐसी जो बात है वो तो गद्दे के सिंह देखने से भी अधिक मिथ्या सिद्धांत है। आज के जमाने में लोग जो है वो मटेरियल
में मानते हैं,
तो कहते हैं हम तो पढ़े लिखे हैं, ऐसे हमारी नजर में जब लोग थोड़ा नहीं दिखे, हमारे सामने नहीं दिखे,
जैसे ही बटन दबाते ही लाइट आता है, हाँ रुकते हैं, ऐसा हमको तो हमारी सामने दिखे,
तभी हम मानेंगे
तो हम उसको
ये तुम्हारी बात करें, तुम्हारी जो मिथ्या श्रद्धा है उसे तो हम अंधश्रद्धा कहते हैं, और पुराने काल
में ऐसी अंधश्रद्धा थी कि लोग हवन होम करके यज्ञ
आजादी करके बारिश को लाना चाहते थे, तो इसमें ये बकरे जो काट के
मारते थे उसका भोग देते थे, पर चाहते थे कि इंद्रादि प्रसन्न हो गए, वरुण देव प्रसन्न हो गए, और हमें वो पानी भेजेगा। जितनी ये
अंधश्रद्धा बेकार है
उतना ही तेरा पर पदार्थ में सुख का अनुभव उतनी ही अंधश्रद्धा है।
हम कहते हैं कि दिखाओ हमको, अगर तुम्हें यहाँ सुख है तो तुम यहाँ ही रहो, क्यों छोड़ते हो? एक लड्डू खाया इतना सुख हुआ, दो लड्डू में तो दोगुना होना ही चाहिए, क्यों? ये तो गणित का विषय है, अंक का विषय, एक प्लस एक दो नहीं होता है, क्या कहते हैं आप? अभी तो सिद्ध कर दिया कि एक प्लस एक तो दो ही होता है, या तो आप दो ही नहीं बताते हैं, क्या बात है कि गिनती में तो ये चक्कर होता ही है, कभी एक प्लस एक दो नहीं भी होता है, ये गिनती का चक्कर है, लेकिन स्वभाव में ऐसा चक्कर पड़ता नहीं है। एक लड्डू में जो सुख है दो लड्डू में डबल होता है नहीं, पांच में पांच गुणा होता है नहीं, दस में दस गुणा होता है नहीं, दस में तो वामित होता है, क्या होता है इसमें? अब आप बस करो बस करो, अब तुझे खाया है ठीक चल जाएगा, क्या कहा गया तेरा सुख? अभी अभी तो अब तो तुमने खाली छोड़ी भी नहीं, इससे पहले तुमने कल्पना छोड़ की सुख भाव को दिया, क्या कर रहे हैं? मतलब इतना ऊपर ऊपर था कल्पित भाव में जी, सत्य असत्य का विचार नहीं करता, सत्य सत्य का विचार नहीं करता, यानी मानता है अपने को बुद्धिमान के मैं तो पूरा मटेरियलिस्टिक हूँ, मटेरियलिज्म में मानता हूँ, ठोस बात सामने आएगी कहाँ ठोस पड़ा गया, जहाँ सुख की बात है मैंने प्रयोजन की बात है वहीं तेरा ठोस पड़ा कर दिया। इतनी कल्पना में भ्रमण करते करते तुम्हें जन्म मरण के कारण बनाए, नहीं आए क्यों मानते हैं? तो इसी परिणाम से तो मानते हैं, ये सुबह ये सुबह कुछ परिणाम है, इससे सब जो कर्म के खाते में एंट्री पड़ती है, फिर इसकी फल श्रुति में जो रस्सी बनती है, एक तार मिलाया, दूसरा मिलाया, तीसरा मिलाया, फिर इसका जो बंधन होता है वो तो नई आयुष की एक रस्सी बन जाती है। इसी भाव में नया आयुष बन जाता है और इनका ऐसा ही संबंध है कि ये वर्तमान आयुष पूरा होने के बाद भी एक समय या दो समय या तीन समय से थोड़ा सा जाती है, इतना अंतर रहता है, अनंतर समय में ही शुरू होता है। दूसरी गति में, विग्रह गति में कभी को एक समय निकालता है, कभी किसी को दो या तीन समय लगता है। तो कहते हैं कि अज्ञात का श्रद्धान गड्ढे के सिंह के समान है, इसलिए बिना आत्मज्ञान समय श्रद्धान कभी होता नहीं। और जब श्रद्धान भी उदित नहीं होता, स्वयं को विश्वास नहीं है, प्रतीति नहीं है कि यही मेरा स्वभाव है, तब समस्त अन्य भावों के भेद से आत्मा में भीषण स्थिर होने की असमर्थता के कारण अन्य अन्य भाव जो अनादि से परिणाम में राग द्वेष मोह आदि जो भी परिणाम चल रहे हैं, उससे भिन्न होना, अपना भिन्न अस्तित्व का ग्रहण करना और स्वयं में स्थिर होना, ऐसा सामर्थ्य तो निशंकता के साथ ही पैदा होता है कि ये मैं नहीं हूं, मेरा अस्तित्व ही इसमें नहीं है। वेद ज्ञान में जो भी इसकी फलश्रुति आती है, वेद ज्ञान तो एक प्रोसेस है, इसमें ये अभ्यास करता है, ये प्रयोग का अभ्यास करता है कि मेरा अस्तित्व ही राधा जी में नहीं है। राधा जी और देहा जी के बिना जो मेरा स्वरूप है, इसके बिना की मेरी चीज है, मेरा अस्तित्व मेरे में है जो ज्ञानादि से अनुभव गोचर होता है, और राधा जी और देहा जी जो भी अन्य द्रव्य और अन्य भाव है उसमें मेरा होनापना नहीं है, मेरा अस्तित्व ही नहीं है, ऐसा भिन्न अस्तित्व का ये प्रयोग है। तो निशंक रूप से जहां तक स्थापित नहीं होता है, वहां तक अपने में स्थिर होने की सामर्थ्य आती नहीं। ये ज्ञान के विषय में लोग बहुत सी लंबी चौड़ी बातें करते हैं, ज्ञान के विषय में बहुत सा साहित्य आज भी उपलब्ध है। इस प्रकार के अभ्यास करने वालों में कई प्रकार से साहित्य को अभी भी देख सकते हैं, लेकिन ये पारमार्थिक ज्ञान है, ये सच्चा ज्ञान है। एकांत में बैठना, पद्मासन आदि शरीर के कट्टा, ये कमर से, ये यहाँ से सबसे सीधा, ऐसा एक सब प्रकार के जो ध्यान की जो बाई स्थिति है, नासिकाग्र दृष्टि का होना, इसमें भी कई प्रकार के मानसिक प्रयोग से ये शरीर का प्रयोग हो गया, मौन रहना ये वाचा का प्रयोग हो गया, और कितने प्रकार के मानसिक प्रयोग से, इन तीनों योग के प्रयोग से परिणाम की थोड़ी चंचलता कम होती है, तो लोग मान लेते हैं कि ये ध्यान है, और उसमें भी इसको कुछ लाल पीला काला दिखने में आ जाता है, काला तो नहीं लेकिन फिर जैसे जैसे कोई लाइट बाइट का कल्पना हो जाती है तो वो समझते हैं करे प्रकाश आ गया मेरे आत्मा। कहते हैं कि ध्यान ज्ञान जो है वो तो व्यवहारिक तौर से उसको आरोप दिया गया है, सब प्रक्रिया को आरोप ध्यान का दिया जाता है। वास्तव में इधर जो लिखा है कि सम्यक ज्ञान और सम्यक प्रधान से भिन्न आत्मा की निशंकता उत्पन्न होती है, तभी जो उपयोग स्थिर होके निश्चल रूप से आत्मा में ही लीन रहता है, संलग्न रहता है, अंतर्लीन रहता है, तभी उसको ध्यान कहते हैं। उसी को ही आत्मा का आचरण कहते हैं, उसी को ही ध्यान कहते हैं, उसी को ही तप कहते हैं, उसी को ही संयम कहते हैं। और इससे कर्म की निर्जरा है, दूसरे कोई परिणाम से कर्म की निर्जरा द्रव्य रूप से नहीं है, द्रव्य कर्म की निर्जरा। और भाव रूप से शुद्धि की वृद्धि होती है, ऐसी भाव निर्जरा कि एक ही प्रकार का जो है, जिसको धर्म कहते हैं, जिसको धर्म ध्यान भी कहते हैं। ये ध्यान की परिभाषा उमा स्वामी महाराज ने की है, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, ऐसा करके कहते हैं। वो तो एक जनरल परिभाषा है कि ध्यान के जो चार प्रकार हैं, आर्त रौद्र धर्म और सूक्ष्म, उसमें ये परिभाषा है वो चारों में लागू होती है। एक अग्र एक विषय में मुख्य करके, अग्र में प्रधान करके मुख्य करके, जहां भी परिणाम संलग्न होता है, लीन होता है। क्या इसका लीन होने का लक्षण कहा कि दूसरी दूसरी चिंता का वहां स्वयं विरोध हो गया, स्वयं चिंता हुई ही नहीं, दूसरा संकल्प विकल्प हुआ ही नहीं, तो ऐसे परिणाम को ध्यान कहते हैं। जब आत्मा के विषय में निशंक होने के बाद, निशंकता के वश दूसरे विकल्प खड़े नहीं होते, दूसरे रागादि कण पैदा ही नहीं होते, बुद्धिपूर्वक राग की उत्पत्ति का अभाव हो जाता है और निर्विकल्प स्वरूपाचरण की स्वरूप स्थिरता की दशा उत्पन्न होती है, उसी को ही ध्यान कहते हैं। यही धर्म ज्ञान है और उसी का एक बहुत उच्चतर स्टेज है, जो मुनिराज को साथ में संस्थान छोड़ के फिर आगे की परिणाम की ऊर्ध्व श्रेणी में ये उत्पन्न होता है। तो ऐसे ही एकाग्रता को सुख ध्यान का, उज्ज्वल ध्यान का, निर्विकार ध्यान का नाम दिया गया है, सुख ध्यान। पर उस ध्यान में तो केवल ज्ञान निकटतम है, एकदम निकट है, अंतर्मूर्त में आत्मा की पुण्यता प्रकट होती है, जिसे हम अरिहंत दशा कहते हैं। यहाँ पे ऐसे समस्त अनुभवों से, भेद से, भेद से मैंने भिन्न होने से आत्मा में निशंक स्थिर होने की असमस्ता के कारण आचरण उदित नहीं होने से न ज्ञान हुआ, न प्रदान हुआ, न आचरण हुआ। मिथ्या ज्ञान अनादि से जो है वो वैसा का वैसा चालू रहा, वैसा प्रदान चालू रहा, वैसा विपरीत आचरण चालू रहा। ऐसा होने से ऐसे परिणाम आत्मा को नहीं साध सकता, ये आत्मा को नहीं साधता है, ये पर पदार्थ को साधता है। भले ही पर पदार्थ आत्मा को मिले या न मिले, लेकिन वो साधता है, साधने की चेष्टा करता है, इसलिए साधता है ऐसा कहने में आता है। इस प्रकार साज आत्मा की सिद्धि की अनुभव अनुपत्ति है। इस प्रकार से ये सिद्ध किया कि साज जो अपने आत्मा, इसकी प्राप्ति, इसकी सिद्धि, इसका अनुभव, इसका अन्य प्रकार संसार में हो ही नहीं सकता। पहले इसका ज्ञान संवेदन रूप से आता है, साथ ही अनुभव के काल में निर्विकल प्रतीत का भाव भी उत्पन्न हो जाता है, साथ ही स्वरूपता रह जाती है। तभी उसको प्रधान ज्ञान आचरण संयुक्त ज्ञान का मुख मार्ग उसको धर्म कहते हैं। धर्म ऐसा नहीं है कि संयुक्त दर्शन हुआ है, भले ही हमें चारित्र न हो, संयुक्त दर्शन हमारी श्रद्धा तो पक्की है, इसलिए हमारा संयुक्त दर्शन पक्का है, और हमको भले ही चारित्र स्वरूप स्वीकार न हो, ऐसा कभी बनता तो एक ही समय में साथ ही रहता है। जब अनंत गुण रहता है, परिणमता है सिद्ध होकर आंशिक रूप में, तब चारित्र को क्या दिक्कत है परिणमन में, तो क्यों नहीं परिणमेगा। अनंत में एक बाकी रहता है ऐसा विधान तो कहीं नहीं आया, की ये बातें रह गया, इसका भावार्थ टीका यहाँ पूरी होती है। ये भावार्थ किया है पंडित जयसिंह जी ने, जयपुर में हुए, उन्होंने ये भावार्थ करके लिखा है। हिंदी गुजराती जो भी हुआ है वो उनका ही भावार्थ क्या अनुवाद है। साध आत्मा की स्थिति दर्शन ज्ञान चारित्र से ही है, अन्य प्रकार से नहीं। साध जो अपनी आत्मा यानी साध जो मोक्ष साध दिया है, इस मोक्ष की जो सिद्धि वो दर्शन ज्ञान चारित्र से ही है। आत्मा का स्थान, आत्मा का ज्ञान और आत्मा का स्वरूप आचरण से ही है, अन्य प्रकार से नहीं है। क्योंकि पहले तो आत्मा को जाने की, यह जो जानने वाला अनुभव में आता है तो मैं हूँ, यह ज्ञान का प्रयोग पंडित ने किया है। मूल में टीका में आचार्य महाराज ने अनुभूति है तो मैं ऐसा शब्द दिया है, लेकिन भगवान अनुभूति तो ज्ञान में होती है। ज्ञान का ही स्वभाव अनुभव करने का है, पर आप ज्ञान शब्द का प्रयोग नहीं किया, अनुभूति का प्रयोग किया। ज्ञान से तेरा लक्ष्य जो जाता है, ये है सविकल्प ज्ञान है, वेद रूप ज्ञान में उस पर तेरा लक्ष्य जाता है, ऐसा ज्ञान हमको नहीं बताना है। इस विचार से ऐसा ज्ञान ज्ञान हमको नहीं बताना है। जो ज्ञान ज्ञान वेदन में है, ज्ञान ज्ञान की अनुभूति में है, ऐसा ज्ञान का हमको निर्देश तो है, तेरे में ऐसा है। ज्ञान में ज्ञान का अनुभव मिटा नहीं सकते, निकाल नहीं सकते, क्योंकि वो तो अभेद रूप से है। एक ज्ञान की अवस्था का अनुभव कोई दूसरी ज्ञान की अवस्था करके ऐसा नहीं है। जो ज्ञान की पहली प्रज्ञा उत्पन्न हुई, वही ज्ञान की प्रज्ञा अपने अनुभव करके उत्पन्न हुई है, अनुभव की हुई उत्पन्न हो रही है, मैंने चालू है, उसमें पीछे से अनुभव करना वो भी बात नहीं है। और उसमें जो अनुभव रहा है अपना, उसको छोड़ भी नहीं सकते, निकाल भी नहीं सकते, क्योंकि स्वयं अनुभूति स्वरूप है, अनुभव स्वरूप है उनको ज्ञान का। लेकिन इतने पर से हटकर इतना भीतर में देखने का प्रयास नहीं है तो वो समझ नहीं आता। अंतर्मुखता क्या चीज है, अरे इतना ही सोचे तो बहिर्मुख भाव अधर्म है, जीव के बहिर्मुख भाव अधर्म है और जीव के अंतर्मुख परिणाम है वो धर्म है। तो ये अंतर्मुखता क्या चीज है, बहिर्मुखता तो हम अनुभव गोचर है। ये ज्ञान को ज्ञान का अनुभव वही अंतर्मुख पड़ा है और कोई दूसरी बात नहीं है। एक बात इतनी है कि लक्ष्य जो है वो परिपूर्ण पूरा स्रोत पर है और वेदन ज्ञान का है। लक्ष्य परिपूर्ण परमात्म तत्व पर है और वेदन है ज्ञान को, ज्ञान का वेदन है, उसी को ही अंतर्मुख परिणाम कहने में आया है। अंतर्मुख का और कोई दूसरी थोड़ी चीज नहीं है, क्योंकि ज्ञान के परिणाम में लक्ष्य और वेदन ऐसा दो प्रकार होता ही है। एक निगोल के जीव की अवस्था को लेकर सीध परमात्मा की सिद्ध पर्यंत योगी अवस्था वाले जितने भी विश्व ने दी है अनंत आनंद, सभी को अपनी पर्याय का ज्ञान का निवेदन आता है। और जिन लोगों का लक्ष्य पर हर पद पर है उनको उसका पता नहीं है, इसलिए वो मानता है, जानता है, भ्रम से मिथ्या भाव से कुछ राग का और बंदा भी बनाता है। और जिसका लक्ष्य आत्मा पर है उसको व्यवहार किया जाता है, उसको आत्मा का अनुभव हुआ, आत्मा का वेदन हुआ। लेकिन वो तो अवस्था से दबाव को अवेयरनेस के अवेयर की दिशा में कहा है, अवेयरनेस से कहा है, किसी चीज को भेदने से अगर हम कहें तो अनुभव तो अवस्था का होता है, आत्मा का कटे होता है। चतुर्थ गुण स्थान में भी नहीं और सिद्धालय में भी नहीं, ये तो सामान्य रूप है जिसमें वेदन का अभाव है। वेदन तो पर्याय में होता है, सामान्य में वेदन कहता है, पर वेदन का जो धर्म है इसकी मर्यादा है अवस्था बनी, और ये अवस्था धर्म है तो सामान्य का धर्म, इसलिए इसमें वेदन होता ही नहीं, वेदन आता ही नहीं। और वेदन नहीं आता तो यहाँ आश्रय करते हैं कि ये मैं हूं, तो अवस्था में जो दूसरे दूसरे पदार्थ का ज्ञान होने से एक खिंचाव आता है कि मुझे इसका वेदन हो रहा है, वो छूट जाता है, ये इनकी कला है। ज्ञान में अन्य पदार्थ का प्रतिबिंब होना कोई रोक नहीं सकेगा, ये तो इनका स्वच्छ धर्म है, इसका स्वरूप है, इनका रूप है। फिर भी अन्य पदार्थ ज्ञान में आने पर भी उनकी कोई असर नहीं हो रहे, ये कैसे किया जाए, वो कैसे कर सकते हैं कि उन पर से लक्ष्य हटा के जो अवेदक आत्म स्वभाव है उस पर जब लक्ष्य जाता है तो मैं तो ऐसा हूं कि जहां वेदन का अभाव है तब स्वसंवेदन रूप पर्याय का वेदन रहता है और अन्य जे आकार का वेदन रूप जो विकृति है वो विकृति पैदा नहीं, उसी को ही मोक्ष मार्ग की कला कहने में आई है। उसको ही आत्माभिमुख होने वाला ज्ञान की सम्यक ज्ञान की कला कहने में आई है, यही सम्यक ज्ञान की कला है। सम्यक शब्द ही स्वाभिमुख सूचक है, हमारे जैन धर्म में जैन संप्रदाय में सम्यक का अर्थ सबका ऐसा रूढ़ी अर्थ निकाला गया है, लेकिन ये तो रूढ़ी अर्थ है, ये संस्कृत शब्द है और ये दिशा सूचक है। अपनी आत्मा की सन्मुख होना वही सम्यक है, स्वाभिमुख होना ही सम्यक है, पर वही सच्चा ही यथार होने से उसको सत्य है, सच्चा है ऐसा कह सकते हैं, कहने में कोई इतराज नहीं, लेकिन इसका सही भाव तो दिशा सूचक है कि जो आत्मा भी हुए उसको नाम सम्यक कहें। और इसीलिए सर्वगुण आत्मा विमुख होता है, सर्वगुणों के परिणाम आत्मा विमुख होता है, तभी इनको सम्यक ऐसी अवस्था का नाम दिया जाता है, ऐसी इसका ये परिणाम है। क्या है ये सम्यक तो गुण है, इसका ये परिणाम है जो वचन और दूषण है, इसको कहने को और सुनने के लिए कोई अधिकारी नहीं है, ऐसा कहा है पंचा अध्याय में ये बात करते हैं। क्या क्या बात आई है सत्ता को, ये तो बात बहुत सूक्ष्म विषय की है, फिर भी हम प्रयोजन के हिसाब से इसमें समझ सकते हैं कि हम हमारे परिणाम को सुगमता से स्वाभिमुख अंतर्मुख कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं कि हमको ये समझने को मिला है कि हमारे में हमारे ज्ञान के परिणाम में हमारा ज्ञान वेदन चाली है, हम और जगह से हमारा ध्यान और लक्ष्य को हटाकर यहाँ केंद्रित करें, अपने अनुभव को ठीक ढंग से देखे तो हमको पता चलता है कि पानु भूति कोई मैं हूँ, ऐसा मैं पढ़ा इसमें आएगा, अपना अस्तित्व अनुभव में आएगा, अपना अस्तित्व का ग्रहण होगा, वही स्वानुभव है, वही स्वानुभूति और वही यहाँ क्या आत्मज्ञान है, इससे धर्म नहीं बनता है, ऐसे परिणाम है वो धर्म के बंध परिणाम है, और अबंध परिणाम से जन्म मरण का नया बंध नहीं होता, इसलिए इनको जन्म मरण का छेद कहा गया है। सिर्फ जन्म मरण का छेद है इतना ही नहीं, लेकिन सर्व दुख को वर्तमान में इनको बिताता है, ऐसी एक दवाई है कि अनंत रोग का एक ही अनंत रोग की अनंत दुख की एक ही दवाई है जो वर्तमान में ही उसका असर दिखाती है। ये धर्म का धंधा उधारी का नहीं, बिल्कुल हार्ड कैच है, ये कैच नहीं है लेकिन हार्ड अच्छा कैच है, ऐसा अपने को ये अनुभव कराता है। यहाँ तक